Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, लगातार हो रही असफलता से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर हार के बाद जीत है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मोहित गुप्ता जी और मोनिका जी। ओम शांति।
ओम शांति, नमस्कार।
वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं यूथ की। यूथ के अंदर कई सारी ऊर्जा होती है, जो अगर सही डायरेक्शन में केंद्रित किया जाए तो फिर उसके क्या कहने। लेकिन आज के जो दौर चल रहा है, उसके अंदर में यूथ के अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल की थोड़ी सी कमी होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए, जैसा आपने बोला कि यूथ के अंदर बहुत एनर्जी होती है, एनर्जी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी यूथ के अंदर होता है। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, और यूथ की जो एनर्जी है उसको हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन उस पॉजिटिव एनर्जी को अगर डायरेक्शन ना मिले या उसको मिस डायरेक्शन मिले तो वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी का रूप ले लेती है। नेगेटिव जब भी हम कोई कर्म करते हैं, अगर कोई यूज जो है वो नेगेटिव कर्मा की तरफ जाते हैं, तो उसके अंदर धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर कोई नेगेटिव कर्मा हम लोग करेंगे, लेकिन जब कोई हम पॉजिटिव परफॉर्मेंस करते हैं, उनको सब तरह से अप्लॉड मिलता है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाता है। इट इज नेचुरल फॉर एनी यूथ टू सीक अप्रूवल। यू नो, यूथ इज अ जो हमारी एज होती है, उसके अंदर हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो केवल हम कर्म के लिए नहीं करते, वी नो दैट द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग अस और मेनी अदर पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग अस। तो कमी कहना ठीक नहीं होगा, हम लोगों को ये देखना है कि जो एनर्जी है क्या हम उसको प्रॉपर चैनलाइज करके सही डायरेक्शन दे पा रहे हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। आप आजकल सीरियल एपिसोड्स भी देखते हैं, इंसिडेंट्स भी देख रहे हैं, जहाँ हमारे सब यूथ्स ने जो हैं दे आर बबलिंग विद एनर्जी। लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में आता है, और मैं समझता हूँ हमारे सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके मन में भी आता होगा, वो ये है कि क्या इस एनर्जी को हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर लगा रहे हैं। वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हमारे सबसे पहले स्वयं के लिए भी होती है, वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हमारे समाज, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी होती है, उसके बाद वो हमारी सोसाइटी के साथ साथ हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए होती है। अगर उसी एनर्जी को हम लोग नेगेटिविटी की तरफ लगा देते हैं, हम लोग अपना तो एक नेगेटिव थॉट जो है ना, वो नेगेटिव सीरियल रिएक्शन इनिशिएट कर देता है, और वो हमारी एनर्जी को कम करता जाता है। ये रूल है, जब भी आप कोई नेगेटिव कर्म में अपना या नेगेटिव कर्म के अंदर अपना ध्यान लगाएंगे तो हमारी एनर्जी ड्रेन्ड आउट फास्ट हो जाती है, और जब भी हम कोई उन्नति का कार्य, कोई समाज के लिए पॉजिटिव कार्य करते हैं, उससे हमें नेचुरली सोलेस मिलता है और हमको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मिलती है।
मोनिका दीदी, आज अगर हम बात करें इसी टॉपिक के बारे में, तो ऐसे में आपकी क्या राय है?
देखिए, मैं समझती हूँ जैसा अभी डॉक्टर मोहित ने कहा
जी,
कि डायरेक्शन की कमी है, एंड इसको अगर आप एक बहुत सुंदर सिमिली दें तो एक नदी है, नदी का बहाव बहुत तेज़ है, लेकिन अगर उसको आप सही दिशा निर्देश नहीं करते, उसको चैनलाइज नहीं करते, तो वही नदी बाढ़ भी ला सकती है।
क्या बात।
ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप उसको चैनलाइज कर देते हैं तो वहाँ पे डैम बना करके आप उसको इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग दीज डेज हमारे इंटरनेट वर्ल्ड में। कॉन्टेंट है, इंफॉर्मेशन है, एंड अगर उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं करते, चैनलाइज नहीं करते, तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विच इज़ अ बिग डेटा प्रॉब्लम हम बात करते हैं। सिमिलरली यूथफुल जो एज है ना, इट इज़ नोन एज एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी।
सो ट्रू।
अगर हम इस एनर्जी को ऑर्गेनाइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं, और उस चैनलाइज्ड एनर्जी को पॉजिटिवली आप उनको थपथपाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो दे कैन क्रिएट वंडर्स। एंड तभी कहते हैं देश का भविष्य भी यूथ्स हैं। आज यही यूथ कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली हैव टू
जी। डॉक्टर साहब, यूथ के अंदर एनर्जी तो बहुत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कम होने लग गई है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस लेवल की, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपके खुद के अच्छे कर्मों से, लेकिन वो गलत कर्मों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है।
देखिए, ये हम नहीं कहेंगे कि वो सब लोगों के लिए एक हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे कि वो गलत कर्मों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, नहीं। यूथ जो है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। जो भी हम देखेंगे कि सब लोग कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि वही सही तरीका है, उसको हमें कर देना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि इन मैटर्स ऑफ कॉन्शियंस ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट मैटर। यानी अगर 10,000 लोग एक गलत कर्म कर रहे हों तो वो अच्छा नहीं हो जाएगा, वो गलत ही रहेगा। और अगर एक व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा हो, 10,000 लोग उसको निगेट कर रहे हों, लेकिन वो एक व्यक्ति सही माना जाएगा और अल्टीमेटली विजय उसकी ही होगी। तो ये हम सब यूथ्स को, हम सब परिवारों को, पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि इफ 100 पीपल आर डूइंग अ नेगेटिव थिंग, वो सही नहीं हो जाता। तो ये मत सोचिए कि 100 लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी इसी प्रकार से करना है। नंबर वन इज दिस। सेकंड थिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे सबके अंदर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम उस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर होता है हमारा कि दूसरा मुझे रिस्पेक्ट दे तो मेरी रिस्पेक्ट ऊपर बढ़े। नेचुरल है ना, आप खुद भी देखो, हम लोग यूथ हैं, अगर कोई हमको नेगेट करेगा, हमारी सही बात पे भी वो हमको डाउन करेगा तो हमें बुरा लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? आप बताओ। बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी सही बात के लिए भी मैंने अप्रूवल किससे सीखने की कोशिश की? दूसरे व्यक्ति से की। जब मैं दूसरे व्यक्ति से या सामने वाले वर्ल्ड से मैं अप्रूवल सीख करूँगा तो इज इट दैट कि 100% मुझे अप्रूवल मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुझे 120% 90% ऑफ द पीपल आज के समय में अप्रूवल नहीं देंगे। जब मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा, मुझे डिसअप्रूवल मिलेगा, तो मेरी रेस्पेक्ट को क्या होगा? मेरे को ऐसा लगेगा दूसरा व्यक्ति मेरी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। उस डिसरेस्पेक्ट के कारण 60-70% ऑफ द यूथ जो है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम आ जाएगा। कुछ परसेंट यूथ जो है उसको चैलेंज की तरह लेंगे, अपने आप को फिर भी उसको फाइट आउट करेंगे, उनको पता है हम सही हैं, वो और पॉजिटिव तरीके से कार्य करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी डाउन आ जाएगा। और आप इस चीज़ को अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने हर प्रकार के पहलू के अंदर लगा के देखें, दिस विल आंसर द प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग टुडे। आज आप देखो, एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। छोटा सा बच्चा कोई कार्य करता है, उसने किसी इन्फ्लुएंस में आके कोई कार्य कर दिया और वो घर आकर अपने माता पिता को, जो कि रिलेटिवली यंग मदर एंड फादर हैं, उनको आके बताता है कि मैंने ऐसा करा। उसको पता नहीं है कि वो सही है या गलत है जी। माता पिता का रिएक्शन क्या होगा? 100% तो नहीं, 90% पेरेंट्स क्या कहेंगे? अगर उसने ठीक नहीं किया है, दे विल नॉट लिसन पेशेंटली टू दी चाइल्ड। वो उसके ऊपर चिल्लाएंगे या उसके ऊपर एम्फेसाइज करेंगे, तुमने बहुत गलत किया है या तुम्हें इस प्रकार नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, किसने तुम्हें सिखाया, उसकी संगति छोड़ दो। तो बच्चा इज टेकन अबैक कि जिसको मैं अपना कर्म बता रहा हूँ, जिनसे मुझे गाइडेंस मिलनी चाहिए थी, चाहे मैंने सही भी किया गलत भी किया, वो छोटा है लेकिन उसकी थिंकिंग फैकल्टीज वेल डेवलप्ड है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी। अब जब उसका मेंटल स्टेटस टॉर्चर्ड फील करता है, क्या वो अपने पेरेंट्स की किसी और बात को सुनेगा या नहीं सुनेगा? उसे रिजेक्शन महसूस होता है और ये रिजेक्शन जब महसूस होता है तो वो अपने पेरेंट्स से ड्रिफ्ट अपार्ट कर जाता है। फिर शाम को वो बैठें भी, उसको पैचअप करने की कोशिश भी करें, उसको प्यार से समझाएं भी, लेकिन जब पहली मार उसको नेगेटिव मिलती है तो अंदर से हर्ट क्रिएट वो बच्चा करता है। एंड दिस इज हैपनिंग एट एवरी एज। जब छोटा बच्चा है उसके साथ भी हो रहा है, जब बच्चा थोड़ा सा एडोलेसेंट एज में आता है तब उसको ये फेस करना होता है, जब हम एडल्ट्स हो जाते हैं, कॉलेज लाइफ में जाते हैं, तब भी उसको ये फेस करना होता है। एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर फीलिंग नेगेटेड और नेगेटिविटी उनके अंदर आती जा रही है। उनको लगता है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। और इसको पता है वो किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? इसको फिर वो कहते हैं कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, स्पेस हमको नहीं मिलता। स्पेस उनको मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नर्चरिंग के अंदर, कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू बेस्ड सिस्टम के अंदर, हमारी पेरेंटिंग के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमारे कॉलेज सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा लैकुने, एक बहुत बड़ा नेगेटिव लूप होल हमने क्रिएट कर दिया है, जिसके कारण हम लोग पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी चिल्लाते तो रहते हैं लेकिन यूथ्स को हम वो डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं
जी।
अगर हम उस डायरेक्शन को देना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सबको अपने माइंड को रिविजिट करना पड़ेगा, यूथ्स को भी देखना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी, यंग पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि हमको किस तरह इन सिचुएशंस को डील करना है।
आई थिंक आई वुड सेकंड यू ऑन दिस। एंड एक और चीज विच आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज, समवेयर डाउन द लाइन अगर पेरेंट्स शुरू से बच्चों को अंडरस्टैंडिंग दें,
जी,
डीपर अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट सेइंग कि ये चीज़ गलत है ब्लाइंडली, एंड जैसे ही मैंने एक बारी उसको हॉ कर दिया तो वो आगे से आकर के हमको कभी शेयर नहीं करेगा यूथ, क्योंकि उनको लगता है ना कि ओके दिस लीड्स टू अ नेगेटिव इम्प्रेशन रिस्पॉन्स। तो अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो बच्चा डर गया।
बिल्कुल।
एक और चीज विच आई फील यूथ्स में भी हम लोग भी गड़बड़ करते हैं, विच इज जो इन्होंने कहा कि वी सीक अप्रूवल्स, क्योंकि बहुतों को उसके लिए नेगेटिव चीज़ ही ठीक लगती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई वियर अ डायमंड रिंग, कल को कोई मुझे ऐसा कहता है कि ये तो पत्थर है, इसको फेंक दो, ये क्या पहना हुआ है तुमने, बट आई नो दैट दिस इज नॉट अ पत्थर,
करेक्ट,
शुड आई थ्रो इट?
नो।
सिमिलरली आज क्या होता है, लोगों के अप्रूवल्स की वजह से हम अपनी वैल्यूज, हम अपनी पॉजिटिविटीज़ बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं। आई नीड टू सी वॉट डू आई हैव टू कैरी विद मी, मेरे को अपने जीवन में अपने संग क्या लेकर के चलना है, नॉट दैट कि ज़माना क्या कह रहा है उसके चलते हम अपनी अच्छाइयों को छोड़ दें, हम अपनी पॉजिटिविटीज़ को छोड़ दें। बिकॉज हमें ये एक अंडरस्टैंडिंग अगर बचपन से ही मिल जाए कि ये सही है, ये राइट है, और वो एक ओपननेस, एक प्लेटफॉर्म मिले
जी
टू परफॉर्म, देन आई एम श्योर जो हमारे बच्चे हैं, हमारे यूथ्स हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो एक बहुत स्ट्रांगली इमर्ज होंगे, बिकॉज उनकी जो रूट्स हैं दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ।
सो ट्रू।
अदरवाइज वी विल बी कॉन्स्टेंटली सीकिंग कि हमें अप्रूवल्स मिलें, हमें अप्रिसिएशंस मिलें, चाहे वो अप्रिसिएशंस का कोई खास ग्राउंडिंग नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है हमारी स्टैंडिंग स्ट्रांग हो, क्योंकि जिस भी घर की नींव इज फुल ऑफ स्ट्रेंथ, वो घर, वो इमारत, वो बहुत, आप मल्टी फोल्ड बना सकते हैं उसको, बहुत ऊंचा बना सकते हैं। अगर हमारी जो स्टैंडिंग है, रूट्स हैं, अगर वो स्ट्रेंथ वाली नहीं है तो वो इमारत बहुत ऊंची नहीं चल सकती।
जी डॉक्टर साहब, दीदी ने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक बहुत बड़ी राज भी छुपी है कि अगर हम खुद को अंदर से हमेशा एम्पावर्ड फील करें, कभी भी लोनली फील ना करें, तो हम ऑटोमेटिकली हर बात को सही तरीके से देखेंगे और पॉजिटिविटी हमारे अंदर भरती जाएगी। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के, खास करके जो पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग है, ऐसे में बच्चों को प्यार की थोड़ी सी कमी होने लगती है, इस वजह से वो अपने दोस्तों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है जिसके वजह से आज ये प्रॉब्लम हो रही है।
इसके दो पहलू हैं
जी।
एवरीबॉडी इज बिजी इन दिस वर्ल्ड। आज के समय में अगर हम अपना लाइफ को चलाना चाहते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं।
करेक्ट।
और पहले से प्रेशर्स जो हैं आज डेफिनेटली माउंट हो गए हैं, तो उनका परफॉर्मेंस लेवल भी जो है उनको बहुत हाई परफॉर्म करना होता है, जल्दी घर में जान, घर से निकलना होता है, और शाम को भी लेट आते हैं, बच्चों को कई बार दूसरे स्कूल में भी भेजना पड़ता है, फिर वापस आते हैं, इतना एडिक्वेट टाइम उनको नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए क्वांटिटी से ज़्यादा अगर हम क्वालिटी टाइम दें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और परमात्मा हमको हमेशा यही डायरेक्शन देता है कि आप बिज़ी तो बाहर रहिए लेकिन अपने मन को बहुत ईजी रखिए, अपने मन को रिलैक्स रखिए। तो बच्चे क्यों दूसरी तरफ जाते हैं जब उनको अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स से नहीं मिलती है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारे दोनों पेरेंट्स जो हैं दे आर वर्किंग पेरेंट्स, दे बोथ आर डॉक्टर्स आल्सो। तो कई बारी बचपन में हमसे भी ऐसी बातें होती थी, या हम लोग कुछ आके कभी कुछ दोस्तों के बातों में आके हमने कोई ऐसी बात कर दी या कह दिया, तो जब भी हम घर में आकर वो बात अपने मम्मी को या पापा को कहते थे तो आई डोंट रिमेंबर अ डे कि उन्होंने हमको वहीं पर बहुत तेज़ी से टोक दिया हो या हमारे ऊपर चिल्लाए हों। कभी भी मुस्कुरा देते थे वो हमारी बात पर और फिर वो बात को डाइवर्ट करके खाना पीना खाकर हम लोग, हमारी दिनचर्या जो नॉर्मल चलती थी वो चलती रहती थी। फिर एक दिन बाद या कभी भी कोई एडिक्वेट या प्रॉपर समय होता था खेल का, तो अप्रोप्रिएट टाइम पर हमारी मदर जो है वो धीरे से वो बात खिसका देती थी, और वो कहती थी जैसे उस दिन वाली बात थी ना, तो उसमें हम लोग इस तरह कर सकते थे, आई थिंक दिस इज बेटर, इस तरह करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता। हमें समझ में आता है कि वो बात हमको वो याद दिला रही है
जी।
लेकिन द वे इट इज डिलीवर्ड, बात वही है लेकिन उसको परोसा किस तरह किया। आप देखो, अगर आपको भोजन अच्छा दिया जाए और भोजन आपके सामने लाके ऐसे फेंक दिया जाए या फीलिंग्स के साथ ना दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा वो नहीं लगेगा,
और आप खाएंगे भी
नहीं, आप उसको इग्नोर करेंगे, आप कहेंगे नहीं ये तो मेरा अपमान है,
कितनी भी भूख लगी हो।
लेकिन उसको परोस के उसको प्रॉपर तरीके से आपके समय एक पैकेज की तरह आपको उपस्थित किया जाए, आपके समक्ष रखा जाए, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फुली नहीं तो लेकिन सिग्निफिकेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये चीज, दिस इज नथिंग डिफरेंस, बात वही है लेकिन उसको कहने का अंदाज जो है वो बदल दिया गया। ये चीज़ हम लोगों को समझनी है, बच्चों को भी यानी यंग चिल्ड्रन को भी समझनी है और यूथ्स को भी ये बात समझनी है
जी।
हमें एक बात आज ये क्लियर करनी होगी कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम टुगेदर। हम लोग ये कहते हैं कि हमको बोलने की फ्रीडम है, हम लोग ये कहते हैं हमको ऐसा भी करना है, सब कुछ हमको है, लेकिन उसके साथ हमारा समाज, हमारा देश हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डालता है। आज मीडिया के कारण, सब चीज़ों के कारण हम लोग का हर एक्सप्रेशन बहुत क्लियरली हमको बाहर दिखता है। लेकिन मैं ये एक क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, और मैं कई बार अपने आप से भी पूछता हूँ कि जो चीज़ मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उसका बेसिक फाउंडेशन के अंदर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मेरे स्वयं के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, क्या उनको मैं कर्तव्यनिष्ठ होकर प्रॉपरली निर्वाह कर रहा हूँ। अगर हम लोग कर रहे हैं तो मैं अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ। और दूसरी बात जो आपने बोली कि कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं या पेरेंट्स की बात, नेचुरल है ना, अगर आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे या अगर मैं आपकी बात को ढंग से नहीं समझूंगा तो क्या आप वही बात मुझे अगली बार आकर कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, वो मेरी बात को समझते ही नहीं है, वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, यही वर्ड हम यूज करते हैं ना, वो मेरी भावनाओं को नहीं समझते, आई एम राइट। हर व्यक्ति, चाहे बच्चा है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे यूथ्स हैं, चाहे कोई भी हैं, वो जब कोई पर्टिकुलर कर्म कर रहा होता है तो वो किसी सोच के वशीभूत होकर उसकी इन्फ्लुएंस के अंदर आकर वो कार्य कर रहा होता है, और उस समय वो सही कर रहा होता है क्योंकि वो उसके दबाव में है, उसका मन, उसकी बुद्धि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी तर्क को समझने के लिए, तर्कसंगत बात को जानने के लिए वो रिसेप्टिव नहीं होता, तो वो राइट है। उस समय आप उसको रॉन्ग कहोगे, वो आपको बैश करेगा या आपको, आपसे वो दूर हो जाएगा। इसलिए आज के समाज में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं।
पर क्या इसका मेजर रीज़न उनके खुद की ईगो भी है? क्योंकि आज अगर देखें हम, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, खास करके यूथ्स के अंदर में। अगर आप देखेंगे तो 90% ऑफ यूथ बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि उनको किसी भी चीज़ के लिए टोका जाए। उन्हें लगता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपनी डिसीजंस खुद लूँगा। लेकिन ऐसे में अगर वो ट्रैप फील करते हैं पेरेंट्स के द्वारा, तो वो और भी पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं। इज इट राइट?
आई थिंक समवेयर इट इज़ राइट दैट दिस इज़ हैपनिंग, ये हो रहा है बिल्कुल, और इसके ज़िम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम खुद ही हैं। स्पेस देना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, कब कहाँ कैसे, ये इम्पॉर्टेंट है।
करेक्ट।
क्योंकि बच्चों को अगर आप कहें, जैसा बता रहे थे कि पेड़ के न्यायी हैं, छोटी कोपल की तरह हैं, उसके लिए पेड़ को जैसे एक पर्याप्त मात्रा ऑफ सनलाइट कहें या पानी कहें ज़रूरत है, उसी प्रकार बच्चों को कोई पेरेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
करेक्ट।
उनका अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं समझती हूँ आजकल जिस तरीके की हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, एंड आई थिंक हमें काम भी करना पड़ता है, आजकल फैमिलीज डिंक्स बन गई हैं, डबल इनकम ग्रुप्स हैं, दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, उसके लिए बच्चों के साथ हम थोड़ा समय व्यतीत करें, लेकिन उसमें हम उनकी भावनाओं को समझें, हम उसको ग्रो करें, हम उनको दिशा निर्देश दें, वो बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा, जैसे एक प्लांट अगर उसे प्रॉपर चीज़ नहीं मिलती तो वो एक दूसरी तरफ झुक जाता है, और झुक करके उसका सहारा पकड़ करके एक क्रीपर की तरह चलने लगता है। वो क्रीपर्स कौन हैं? वो क्रीपर्स उसके मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, या कोई और एक्सटर्नल व्यक्ति है जिसके प्रति उसका लगाव झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब वनस्पति की वो एक पेड़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से ग्रो कर रहा है, अपने आप खड़ा हो रहा है, और उसके इर्द गिर्द क्रीपर्स हो गए, वो अब खुद क्रीपर बन के दूसरों का सहारा ढूंढ लेता है।
जैसे इसमें मोनिका ने आपको बताया कि ये बात बिल्कुल सही है कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। अब जैसे क्वालिटी टाइम जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम क्वालिटी टाइम दें, तो बहुत सिंपल है कि जैसे रात को हम लोग बैठें या शाम को हम लोग बैठें तो अक्सर देखा जाता है परिवार के अंदर टेलीविज़न बहुत जोर के चल रहा होता है, बच्चे जो हैं वो अलग कमरे में खाना खा रहे होते हैं, उनका भोजन अलग बनता है, माता पिता अलग खाते हैं, उनको आने का ना टाइम है ना जाने का कोई पर्टिकुलर टाइम है, कई बार बच्चे ही बहुत लेट नाइट पार्टीज़ के बाद आते हैं। लेकिन हमने पर्टिकुलरली अपने परिवार के अंदर इस चीज़ को यूज़ किया, वो प्रैक्टिकली क्या किया कि रात का भोजन, कई बार सवेरे हम बिजी भी हैं तो रात का भोजन जब साइलेंस में बैठकर टेबल पर हम सब लोग साथ खाते हैं, उसके साथ क्या होता है कि अगर माता पिता और बच्चे वहाँ पर बैठे हैं तो इमोशनल एक्सचेंज, बातें, दिन की पूरी दिनचर्या की बातें भी होंगी, कई बार उन बातों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आएगा, लेकिन यू आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जो हम लोग जनरेशन गैप की दुहाई लेकर या उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम लोग कितना आगे खींचते हैं, नहीं वो मेरी बात को नहीं समझते, और कहीं ना कहीं वो नैरो डाउन हो जाता है। एक्सपीरियंस इज मैचिंग विद यूथ या न्यू थाट्स एंड ओल्ड थाट्स, ओल्ड थाट्स तो नहीं कहेंगे, मोर एक्सपीरियंस थाट्स, उनका बैलेंस आ जाता है। उसमें जब इमोशनल एक्सचेंज होता है तो इमोशनल कनेक्ट भी फैमिली के अंदर अप्रोप्रिएटली और एप्टली प्रॉपर मात्रा के अंदर भी और प्रॉपर तरीके से वो डेवलप हो जाता है।
क्योंकि देखिए चेंज तो कांस्टेंट है,
बिल्कुल।
अगर मैं हमेशा ही ये समझूं कि मैं आई एम ऑलवेज राइट,
दैट्स नॉट पॉसिबल,
दैट डजंट वर्क,
बिल्कुल।
क्योंकि आजकल के बच्चों में अगर हम वो रिसेप्टिविटी पैदा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी झुकना पड़ेगा, और झुक करके हम बच्चों को भी झुका सकते हैं।
सही बात है।
और ये दोनों के लिए लाजमी है, बच्चे भी झुकते हैं वो बड़ों को प्यार से झुका सकते हैं। तो अगर हम जैसे अभिमान शब्द एक बड़ा सुंदर शब्द है जिसमें बड़ों का अभिमान है कि तुम अभी अभी मेरी बात मानो, और बच्चों का अभिमान है कि मुझे अभी अभी मान मिलना चाहिए। तो अगर हम इस शब्द को समझ लें और अभिमान अपमान ये फीलिंग्स को ख़त्म करके ये समझें कि ये मेरा ही तो बच्चा है, अगर हम कभी कभी बच्चों की बात मान लें और बड़े प्यार से अपनी बात भी मनवा लें, तो मैं समझती हूँ ये जनरेशन गैप्स और ये सब गैप्स वगैरह कभी ज़िंदगी में होंगे ही नहीं, एंड फैमिली ग्रो करती है। क्योंकि ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई है, मैंने बहुत सी फैमिलीज़ देखी हैं जो पेरेंट्स बहुत समय नहीं दे पाते, लेकिन एज अ ग्रुप ये लोग बहुत कनेक्टेड रहते हैं। मतलब बच्चे अपनी चीज़ें, स्कूल में क्या चल रहा है या सब कुछ बताएंगे, विच इज़ ऑल्सो वंडरफुल। आप देखिए टेक्नोलॉजी का ऐप यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब हम सिर्फ बात ही व्हाट्सएप से करेंगे, लेकिन देर आर थिंग्स जब आप शेयर कर सकते हैं अपनी पर्सनल चीज़ें, प्रोफेशनल चीज़ें, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, एडवाइसेस कॉन्स्टेंटली मिलती हैं। तो टेक्नोलॉजी ने हमको दूर भी ले गई है, लेकिन बहुत से लोग टेक्नोलॉजी का ऐप यूज़ करके इस संगठन को और स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हैं।
डबल एजेड स्वॉर्ड है, डबल
एजेड, सो ट्रू।
अब ऐसा भी नहीं कि एक परिवार के अंदर आप बैठे हैं, मदर एक कमरे में हैं और बच्चे दूसरे कमरे में हैं, वो कम्युनिकेट करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज लिख रहे हैं और मदर रिस्पॉन्ड कर रही है कि यहाँ से कर रहे हैं, तो ये डबल एजेड स्वॉर्ड है। तो मेरे को एक आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी मैं ये मानता हूँ कि परिवारों के अंदर जोड़ होने के लिए, परिवारों के अंदर कनेक्ट डेवलप करने के लिए, इमोशनल कनेक्ट डेवलप करने के लिए हमारा एक दूसरे के साथ सामने बैठकर बात करना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि आप उनके फीलिंग्स से कनेक्ट कर पाते हैं उसी वक्त, और आपको ऐसा फील होता है कि कोई मुझे सुन सकता है। इससे क्या होता है कई बार कि हम किसी एक व्यक्ति को ऐसा सहारा ढूंढते हैं जो कि पेरेंट्स के जो प्यार है उसे रिप्लेस कर सके। ये भी कई बार ऐसा होता है जिसकी वजह से आज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, कि हम किसी भी व्यक्ति को जो मुझे सुन रहा है हम उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। ये किस हद तक सही है?
नेचुरली है ना, आप सही नहीं, ये 100% सही है, जो आपकी बात को समझ रहा है जो आपकी बात को सुन रहा है उससे आप इमोशनल कनेक्ट डेवलप करेंगे ही करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपकी बात अच्छी तरह सुन रहे हैं, आप हर बात आके उनको बताएंगे ना,
कहीं ना कहीं वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं।
बेस्ट फ्रेंड आजकल है ही है, फ्रेंड तो जैसे ही आप ये समझिए कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो पापा और मामा का फ्रेंड ही कहलाता है कि आप फ्रेंड बन गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, दैट इज वाई इट इज ऑल दी मोर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी फैमिली बॉन्ड को बहुत स्ट्रांग बना के रखें। जैसे मोनिका ने आपको बताया कि कोई भी पेड़ जो निकलेगा वो बीज से ही निकलेगा, मूल क्या है, एक छोटा सा, बहुत बड़ा पेड़ भी इतना छोटा सा बीज, अगर उसको एप्रोप्रिएट खाद डाली जा रही है सही टाइम पर, उसको पानी दिया जा रहा है सही टाइम पर और सही मात्रा में, दो चीजें हैं, सही टाइम पे भी दिया जा रहा है और सही मात्रा में भी दिया जा रहा है, तो फिर वो सुंदर तरीके से ग्लो करता है।
दिस इज सो ब्यूटीफुल। आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी कि क्वालिटी टाइम देने की जरूरत है और साथ ही साथ सही मात्रा में अगर आप प्यार देंगे बच्चों को तो वो कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों आज हमने इतनी सारी खूबसूरत बातें सीखी जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आप ज़िंदगी में किसी को भी प्यार देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद के अंदर भरपूर होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। अगर आप उनके दोस्त बनकर उनसे रोज़ बातें करेंगे, रोज़ एक समय फिक्स करें जहां पर आप उनके साथ सही क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपका बच्चा कभी भी राह नहीं भटकेगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।